आज की बात।
आज की बात लेकर आपकी सभा में उपस्थित हैं, कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, आज हमारी चर्चा का विषय है भारत में मंदी की आहट से खलबली। भारत में मंदी का भय फैल गया है, और हालांकि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक मंदी की खबरों से व्याप्त चिंता को दूर करने का पूरा प्रयास किया।
The United States and Germany have seen inversion of yield curves, which points to slowdown in growth of consumption in these countries also. So it's not a story just of the emerging economies, but even global advanced economies are facing this. Very volatile situation has developed in the global trade. These are nothing new for you, but I just wanted to place it as a larger context. Again, have decided to launch repo rate or external benchmarking linked loan products. And this will therefore result in reduced EMI for housing loans, vehicles and other retail loans by directly linking repo rate to the interest rates.
भारत में आर्थिक मंदी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, किंतु पहले हमारे साथी अहमद अब्बास की एक रिपोर्ट।
भारत में मंदी की आहट बल्कि धमक साफ सुनाई देने लगी है। इस आर्थिक मंदी की बात कई गलियारों में की जा रही है, किंतु ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेष रूप से आशंका जताई जा रही है, और यही वजह है कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाजार में आई मंदी को दूर करने और अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए कई ऐलान किए, किंतु आशंका खत्म नहीं हो रही है और आर्थिक मंदी का प्रभाव ऑटो, रियल इस्टेट, टेलीकॉम और बैंकिंग से लेकर स्टील और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों पर नजर आना शुरू हो गया है। हालांकि आर्थिक मंदी के कारणों पर चर्चा विशेषज्ञ स्तर पर हो रही है, किंतु भारतीय मीडिया में आर्थिक मंदी के मुख्य रूप से चार कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमत को बताया जा रहा है, और दूसरा कारण डॉलर के मुकाबले में रुपए की घटती हुई कीमत बताई जा रही है। इसके साथ ही आयात की तुलना में निर्यात में गिरावट से भारत में राजकोषीय घाटा बढ़ा और विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई है। कुछ लोग एक कारण ये भी बता रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर की वजह से भी पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ रहा है, जिससे भारत भी प्रभावित है। किंतु बाहरी कारण उतने प्रभावशाली नहीं है जितना असर भारत के भीतरी कारकों से पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट, डिमांड और सप्लाई के बीच लगातार कम होता अंतर और निवेश में कमी जैसी बातें आर्थिक मंदी के खतरे की घंटी बजा रही हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत का ऑटो सेक्टर पीछे जा रहा है, और इसीलिए ऑटो सेक्टर से जुड़े 3.5 लाख से अधिक कर्मचारियों की नौकरी चली गई और करीब 10 लाख नौकरियां खतरे में हैं। इसके अलावा भारत में कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक अर्थात 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले टेक्सटाइल सेक्टर की भी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से 25 से 30 लाख नौकरियाँ जाने की आशंका प्रकट की जा रही है। यही स्थिति रियल इस्टेट सेक्टर में है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बैंकों द्वारा उद्योगों को दिए जाने वाले कर्ज में गिरावट आई है। भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत की GDP विकास दर 6.8% रही, जो गत 5 वर्षों में सबसे कम है।
भारत के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार ने अपने कार्यक्रम में भी आर्थिक मंदी पर बात की है।
19 अगस्त के प्राइम टाइम में हम एक संख्या पर ठिठक गए थे, जब टेक्सटाइल एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि 25 से 50 लाख के बीच नौकरियां जा चुकी हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, और इस सेक्टर में बिक्री 30 से 35% घट गई है, तो यकीन नहीं हुआ। लेकिन वो बताते रहे कि निर्यात भी 30% से ज्यादा घट गया है, जिस सेक्टर में 10 करोड़ से अधिक लोग सीधे या परोक्ष रूप से रोजगार और कारोबार पाते हों, उस सेक्टर की ये स्थिति हो ठीक नहीं है। हमने कई लोगों से बात की, मंदी और नुकसान के बीच साहस की भी मंदी नजर आई। बहुत कम लोग कैमरे पर आकर बोलना चाहते हैं, जबकि उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, करोड़ों के बिजनेसमैन हैं, टीवी के लिए बाइट मांगिए तो किनारा कर लेते हैं, जबकि उनका पूरा बिजनेस जो है वो एक तरह से बर्बाद हो रहा है, उनके सामने बैठ गया है। ये साहस की मंदी है, इसलिए आर्थिक मंदी के साथ साथ बोलने के साहस की मंदी नजर आई है। ऑफ रिकॉर्ड सुखबुगाहट से यही सुनाई दे गया कि ऐसी मंदी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उतार चढ़ाव तो देखा है, मगर ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा और सुना। इंडियन एक्सप्रेस में एक विज्ञापन छपता और यह विज्ञापन पेज नंबर 3 पर छपता है और आधे पन्ने का छपता है। अंग्रेजी में छपे इस विज्ञापन में कहा गया है कि भारत का कताई उद्योग, स्पिनिंग इंडस्ट्री, सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण भारी संख्या में नौकरियां जा रही हैं। विज्ञापन में स्केच से दिखाया गया है कि लोग कतार में खड़े हैं और नो जॉब की तख्ती टंगी है। कताई क्षमता का एक तिहाई बंद हो चुका है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, कताई मिले भारत के किसानों से कपास खरीदने की स्थिति में नहीं है। इसका असर कपास के किसानों पर भी पड़ने वाला है। अगले सीजन में 80,000 करोड़ के कपास उत्पादन की आशा है। अगर कपास नहीं बिका तो टेक्सटाइल का संकट खेती तक पहुंचेगा। खेती के बाद रोजगार के सबसे बड़े सेक्टर की यह हालत है और पता चला विज्ञापन से। यह विज्ञापन नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से छापा गया था। छापने के बाद भी कोई आधिकारिक बयान देने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए, डर नहीं है क्या? एक साल से संकट से गुजर रहे टेक्सटाइल उद्योग की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि विज्ञापन निकलवाकर अपनी व्यथा कहनी पड़ी? बिजनेस अखबारों में टेक्सटाइल उद्योग के संकट पर खबरें और विश्लेषण छप रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहां रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। इसके बाद भी इंडस्ट्री को विज्ञापन देना पड़ जाए कि सरकार का ध्यान चाहिए। हो सकता है कि हिंदी के अखबारों में इतने बड़े संकट की खबर जिला संस्करण तक ही दबा दी जाए और राष्ट्रीय स्तर पर आपको पता ना चले, कोई जहमत ना उठाए। हिंदी चैनलों की बात अब छोड़ दीजिए।
भारत में न्यूज़ चैनलों पर कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आरिफा खानम शेरवानी ने भी अपने कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातें बताई।
अगर अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स को देखेंगे और न्यूज़ चैनल्स अगर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में दशकों से जो राजनीतिक मुद्दे चले आ रहे थे, जो भारत की तरक्की की राह में आगे आ रहे थे, वो सब जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है और भारत में इंटीग्रेशन हो चुका है कश्मीर का, 3 तलाक का मुद्दा ख़त्म हो चुका है और कुछ ही दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा। न्यूज़ चैनल्स ने राम मंदिर बनने की तारीख भी तय कर दी है और उसके बाद जो है संविधान में जिस तरह के बदलाव करना चाहेगी सरकार और न्यूज़ चैनल्स, वो मिलकर वो भी कर लेंगे। यानी कि दशकों से जो भारत की प्रगति की राह में जो रोड़े थे, जो रुकावटें थीं, वो अब ख़त्म हो रही हैं और अब भारत जो है विश्वगुरु बनने वाला है। यानी कि सरकार और न्यूज़ चैनल्स मिलकर आपको ये बताना चाहते हैं, ये आपको सुझाना चाहते हैं कि आप अफीम खाइए और सो जाइए, क्योंकि भारत में जो हकीकत है वो इससे ठीक उलट है। भारत गंभीर मंदी के कगार पर खड़ा हुआ है और अगर हालात इसी तरह के बने रहे तो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही 10 लाख लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बता रही हूँ कि किस तरह से भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या ऑटो सेक्टर भी जिसको कहा जाता है, वो एक गंभीर मंदी के कगार पर खड़ा हुआ है। लेकिन सरकार से ये उम्मीद करना कि वो इस बात की घोषणा करे कि देश में मंदी फिलहाल लागू हो चुकी है, मंदी चल रही है, या कम से कम इस सेक्टर में मंदी हो रही है, ये मेरे ख्याल से बेमानी होगा। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो पूरे तरीके से अपने घुटनों पर आ चुकी है, पूरे तरीके से उसकी हालत इतनी ख़राब है कि 19 साल में अब तक का सबसे कम जो है बिक्री हुई है जुलाई के महीने में। जुलाई के जो आंकड़े आए हैं उससे एक तरह से सिहरन हो उठी है इस पूरी इंडस्ट्री में कि आखिर हो क्या रहा है। 3.5 लाख लोगों की नौकरियां इन आंकड़ों के हिसाब से जा चुकी हैं और अगर इसी तरह के हालात रहे तो, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख लोग इस फिक्र से फिलहाल दो चार हैं कि उनकी नौकरियाँ जा सकती हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में वो ठेके पर जो मजदूर काम करते हैं इस इंडस्ट्री की बदौलत, वो भुखमरी के कगार पर हैं। न सिर्फ कि वो, बल्कि अलग अलग राज्यों में अगर देखा जाए, बहुत मुश्किल है हालांकि आंकड़ा भी एक साथ इकट्ठा कर पाना, लेकिन कितने हज़ार लाख परिवार जो हैं वो पूरी तरीके से भुखमरी के कगार पर आ जाएं जाएंगे और कितने मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। करीब करीब 300 के आसपास जो शोरूम्स हैं, जो डीलरशिप हैं, वो बंद हो चुकी हैं और 31% स्लो डाउन, 31% जो है वो बिक्री गिर गई है तमाम तरह के व्हीकल्स की, तमाम तरह की गाड़ियों की।
प्रोफेसर परवीन झा ने NDTV से एक वार्ता में अपने विचार रखे।
देखिए, इन चीजों को दो तरीके से देखा जा सकता है कि एक लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रांजिशन वाली बात है और इसके आगे जो है एक बेहतर भविष्य हो सकता है, तो हम जो इसके पहले का 20-25 साल है उसको देख लें और दिशा क्या रही है, किस तरफ हम जा रहे हैं। अगर उन चीजों को हम लगा के देखें, जैसे रोजगार की बात अगर आप कर रहे हैं, तो रोजगार को लेकर तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि 80 के दशक के बाद 90 में कमी आई, 90 के बाद जो 2000 का दशक था उसमें कमी आई, 2014-15 से लेकर अभी तक आप देखिएगा तो तकरीबन ठहरा हुआ या उसमें घटोती हुई, यानी कि एब्सोल्यूट डिक्लाइन।
किस चीज में?
रोजगार, रोजगार पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में मैं बोल रहा हूं। तो रोजगार की जो स्थिति है, इसी तरह से अगर आप कृषि को देखें और उसमें जो स्थिति हुई है, इन सब का असर जो है किस पे पड़ता है? मांग पे पड़ता है। अगर आपकी मांग पे जो है प्रेशर आएगा तो जो आप एक अपेक्षा रखेंगे कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी, वो नहीं होना है। इसी तरह से अगर आप निवेश को लेकर देखें, चाहे वो सरकारी निवेश हो चाहे व्यक्तिगत निवेश हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दोनों की स्थिति अभी जो है तकरीबन 10 वर्षों से बुरे हाल में है। 8-9 के बाद लगा लीजिए आप, वो स्थिति काफी गड़बड़ सी है। इसी तरह से अगर आप एक्सपोर्ट को देखें, वो एक मांग का हिस्सा बनता है। तो मैं देखिए, अर्थव्यवस्था के जो दो मुख्य कारण होते हैं, निवेश और मांग, और अगर दोनों की स्थिति चरमराई हुई है और बद से बदतर गर हुए जा रही है, तो निश्चित तौर पे एक स्ट्रक्चरल, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जो आप दिशा कहिएगा, उसमें कहीं से कोई सुधार की संभावना नहीं, इस पर कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। आपको मैं हर सेक्टर के आंकड़े दे सकता हूं। उसके साथ साथ जो ट्रांजिशनल वाली बात है, तो ये ट्रांजिशन जो है इसको और गहरा रहा है, इससे आप कहीं बेहतरी की संभावना नहीं कर सकते हैं।
मंदी किसी भी देश के लिए बेहद चिंता की बात है, किंतु भारत जैसे विकास की राह में तेजी से चलने वाले और विश्व गुरु बनने की कोशिश और दावा करने वाले देश के लिए कुछ अधिक ही चिंता की बात है। और ये चिंता उस समय और भी बढ़ जाती है जब कुछ करने की क्षमता रखने वाले गलियारे इस गहन समस्या को स्वीकार ही नहीं करना चाहते।